कृष्ण।
सबका हार्दिक स्वागत है सोमवारी विशेष कार्यक्रम में। उल्टा आप लोग रेगुलर हैं, मैं तो कई दिनों बाद आ रहा हूँ,
फिर भी आज एक विशेष श्लोक दिया गया है चर्चा के लिए। तात्पर्य थोड़ा लंबा है तो हो सकता है हम पूरा तात्पर्य ना पढ़ पाए। हालांकि विधि यही है कि श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्य हम उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और श्रवण करें। कितने लोगों के पास भगवत गीता के प्रति है अभी? तो व्हाट डू यू थिंक आंसर चैतन्य प्रभु, शुड आई रीड टू द पर्पट बिकॉज इट्स अ लिटिल लॉन्ग। तो आज का श्लोक जो है मैं पढ़ता हूँ, आपने जिनके पास भगवत गीता की प्रतियां हैं कृपया मेरे पास दोहराए। आज नवम अध्याय का दूसरा श्लोक है ग्रंथराज भगवत गीता यथारूप से। और आप सबसे अनुरोध है कि आज घर जाने के बाद जिनका घर बहुत लंबा है वो रास्ते में पढ़ लें, जिनका घर पास है वो घर जाके पढ़ लें, इसका तात्पर्य जरूर पढ़ें क्योंकि आज एकादशी है। इस श्लोक का विशेष करके आप अध्ययन करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। श्रील प्रभुपाद के अपने वचनों में गुरु परंपरा के अनुसार जो लिखा गया है ये तात्पर्य, इसको पढ़ने से सबको लाभ जरूर मिलेगा। मैं आने के पहले पढ़ के आया था ये तात्पर्य, कि मुझे कुछ लगभग 7 बजे के करीब ये कंफर्म हुआ कि मैं लेक्चर दूंगा, तो कुछ थोड़ा आइडिया नहीं था, उसके बीच में एक बार पढ़ लिया था। और सबसे अनुरोध है कि जरूर ये पढ़े तात्पर्य, नवम अध्याय का दूसरा श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, अभी तो कई लोग जानते भी होंगे, कृपया मेरे पास दोहराइए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राज गुह्यम, इसमें कंजूसी मत करिए, भगवान की अपनी वाणी है, जोर से बोले थे कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वैसे ही मंदिर है यहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है, ऐसा नहीं कि ऑफिस से हम क्या करेंगे भगवान के नाम लेके, वैसा नहीं है। तो वैसे जोर से बोले ये जो श्लोक बताया जा रहा है भगवान की अपनी वाणी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें बोलने में हमारी आवाज बहुत ऊंची आती है, भगवान के अपने वचन बोलने में हमें हिचकना नहीं चाहिए। दोबारा राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुखम कर्तुम अव्ययम। शब्दार्थ पर अनुवाद पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के अपने वचनों में। श्रील प्रभुपाद की ध्यानपूर्वक मैं बोलूंगा तो सुनिए और दोहराइए। राज विद्या विद्याओं का राजा, राज गोह्यम गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम शुद्धतम इदं यः उत्तमं दिव्य प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमं समझा गया धर्म्यं धर्म सुखं अत्यंत सुखी कर्तुम संपन्न करने में अव्ययम अविनाशी। अनुवाद ध्यानपूर्वक श्रवण करें और दोहराएं। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है।
श्रील प्रभुपाद की
बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द है इसमें। पहला शब्द क्या है? राजविद्या। तो राजविद्या बोलते हैं तो पहले मुझे याद आया एक आदमी जिसको राजा बनाया गया था एक दिन के लिए। उसको राजा बनाया गया था एक दिन के लिए, शायद एक साल पहले आया था यहाँ पे, शायद तभी भी कथा बोली थी। जो लोग कभी भी थे दोबारा स्मरण कर ले, जो लोग नहीं थे उनके लिए अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है दोहराना, मैं तो पूर्ण कथा है। तो व्यक्ति राजा बनाया गया था एक दिन के लिए, और उसके पहले जितने भी लोग राजा बने थे उनके लिए एक शब्द था, पता है क्या? पता है एग्जैक्टली कि एक साल तुम राजा रहोगे और एक साल के बाद नदी के पार जो जंगल है वहां तुम्हें जाना पड़ेगा और वहीं रहना पड़ेगा। बस वहीं रहना पड़ेगा मतलब क्या? वहां पे जंगली जानवर हैं, बताते थे भूत प्रेत इत्यादि है। तो इसके पहले जितने भी लोग राजा बने थे कितने दिन के लिए बने थे? एक साल, उसके बाद खत्म। जैसे कि अकाउंट में फंड खाली हो गया। अब इस व्यक्ति को राजा बनाया गया, ये जब राजा बना पता इसने क्या किया? एक साल बिल्कुल राजधानी में नहीं था, एक साल पूरा जंगल में था। जंगल में रहते हुए पता है उसने क्या किया? उसने वहां के जितने भी जंगली पौधे थे उसने बहुत सारे जो थे उनको क्लियर करवाया, जंगली जानवरों का से बचने के लिए किला बनवाया, प्रहरी खड़ा करा दिए, खेत बागान इत्यादि का वहां पे बीज बोल दिए ताकि कल जाके भविष्य में उसको असुविधा ना हो। पूरा एक साल के अंदर पूरा रेडी कर देते, जब राजा है तो उसके पास सारी सुविधाएं हैं, जो तय कर सकते हैं ना, आया ना? हाँ, तो उसने पूरी सुविधाएं कर दी। और एक साल उसको तपस्या जरूर थी, राजा बनने से जो सुविधाएं उसको उपलब्ध हो सकती थी उन सब का उसने त्याग कर लिया। किसके लिए? एक साल जो है जंगल को तैयार करा दिया कि आगे जाकर वो वहां पे राज करें, जंगल में मंगल करें। तो बाकी लोग एक साल बाद रोते हुए नदी पार किए और ये आदमी एक साल बाद गाते हुए नदी पार किया। इसमें अंतर क्या है? भले ही कुछ समय के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन के अनुशीलन में उसकी विधि विधानों के अनुसार चलने में अपनी जीवन रीति में उसको संतुलित रूप से भाग बनाने में असुविधा हो सकती है, जिसको तपस्या बोलते हैं, लेकिन इस तपस्या का फल अंत को गत्वा क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, अच्छा मीठा जो भी है अच्छा ही है, मीठा भी अच्छा ही है। तो ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव बोलते हैं अपने पुत्रों को, भरत महाराज सहित सभी सौ लड़कों को बोलते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्मम शुद्ध ये अस्मत ब्रह्म तो क्यों त्वनंतम। अब जबकि मनुष्य शरीर मिला है आपको, बाकी शरीरों में भी आप भोग विलास असीमित मात्रा में कर सकते थे या कर चुके हैं, अब जबकि मनुष्य शरीर मिला है इसमें थोड़ी तपस्या करिए। अभी सोचिए आपके लिए क्या तपस्या है? 8 से 9 बजे तक एसी में बैठते भगवत गीता सुन रहे हैं, तो यहां तपस्या क्या आपके लिए सुनना? बाकी क्या तपस्या है? कंफर्टेबल सीट है, एसी है, उसके बाद प्रसाद है, भगवत कृपा से तपस्या है श्रवण अभी, और श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद परिचर्चा बाकी लोगों से, और उसके बाद जीवन में उसको कार्यान्वित करना, लागू करना, उसका अनुशीलन करना, टू स्टडी टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई, टू नो टू अंडरस्टैंड एंड टू अप्लाई। इसके अलावा क्या तपस्या है? ये तपस्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ, बीच बीच में थोड़ी नींद आती है, उसके अलावा कोई तपस्या है? यस नो, नो यस नो। इसी को भगवान बोल रहे हैं सुख सुखम कर्तुम अव्ययम, इट इज जॉयफुल्ली परफॉर्म्ड, प्रसन्नता पूर्वक किया जाता है। अभी बोलिए, दक्षिण में कहावत है, कोई व्यक्ति आपको गन्ना दे खाने के लिए,
गन्ना
गन्ना जानते हैं ना जिस,
हाँ शुगर कैन,
तो उसे आपको दे दिया खाने के लिए और साथ में पैसे भी दे दिए गन्ने के, तो शिकायत करेंगे क्या? उसके लिए पैसा भी दे दिया और बोला गन्ना खाओ, लॉटरी लग गई ना, वैसे ही है भक्ति। सो सुखम कर्तुम अव्ययम, जॉयफुली परफॉर्म, आनंद पूर्वक किया जाता है। एक बार श्रीला प्रभुपाद कोलकाता में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, उसमें हर प्रकार के तत्व चिंतक दार्शनिक उपस्थित थे, जिनके बारे में इसके तात्पर्य में भी बताया गया, याज्ञवल्क्य, कानाड, जैमिनी, गौतम वगैरह का नाम यहाँ पे बताया गया। उन सब के दार्शनिक सिद्धांतों के अनुगत्य में चलते हुए कई अनुयायी हैं, हो सकता है उसको 19-20 के फर्क के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी चवनी अंटनी डालकर उसको पैकेज करके दे दिया। ऐसे कई सारे दार्शनिक उपस्थित है, उसमें सबने अपना अपना फिलॉसफी प्रस्तुत कर लिया, भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान वो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये सब बोल दिया। तो श्रील प्रभुपाद सुन रहे थे, उनके भक्त भी सुन रहे थे, सारे पूरा पक गए थे, क्या शुष्क चिंतन है, शुष्क है, कोरे त्याग के बारे में बताया जा रहा है, ब्रह्म को जानने के लिए सब त्यागना पड़ेगा, सब त्यागेंगे क्या? ये सब सुन के सारे पक गए। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया, कुछ लोग ये बोलेंगे, कुछ लोग वो बोलेंगे। वो बोलते हुए श्रील प्रभुपाद ने सामने के पैकेट से एक रसगुल्ला उठाया और उन्होंने बोला, हम सब सिर्फ प्रसादम पाते हुए भगवत धाम लौटेंगे और बोले कीर्तन करो। और उसके बाद आधा घंटा इतना घमासान कीर्तन हुआ, सब लोग नाचे गाए, और यही आंदोलन है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। भौतिक जगत में बताते हैं, बोलते कल का क्या है, किसने देखा, हम तो आज नहीं जीते, आज ही जीते हैं, खाओ पियो ऐश करो, प्रणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवे सुखम जीवे। कल का क्या किसने देखा, इसलिए आज ही क्रेडिट में घी खरीदो और खा लो, कल का क्या किसने देगा, आज पूरा आनंद लेंगे। हमारा भी सिद्धांत वही है, कल का क्या है पता नहीं, अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, पेड़ बनेंगे, पौधा बनेंगे, कुछ पता नहीं, इसलिए अब हम जो भी कर रहे हैं आनंद पूर्वक करेंगे। प्रसाद पाने में किसी को नुकसान होता है क्या? हाँ, ज्यादा खाने में नुकसान जरूर होता है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। तो बात यही है कि श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया था, उसने बताया कि तुम्हें हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा बोलते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह हम जब सोते हैं तो सुबह सुबह कीर्तन शुरू कर देते हैं हम लोग, और फिर प्रसाद ही खाते हैं। ये सब करने के बाद आपको पता चला कि कृष्ण नहीं है तो आपका क्या होगा, बोलो, सबके अंदर थोड़ा शक है ना, ये तो ऐसे मंदिर में इसलिए सर्वे लाएंगे नहीं है करके, थोड़ा सोचेंगे तो डर लगेगा, ये सब कर रहे हैं अभी, क्या पता कृष्ण है कि नहीं, खास करके गढ़वाले बोलिए, तो हरे कृष्ण बन गया। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हमारे भक्त तुम्हारे सड़ी हुई समाज के चमकते हुए हीरे हैं, ये नहीं और भी है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग सुबह उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, रात को जल्दी सोने का मतलब नहीं कि लेक्चर में सोना, ठीक है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जाते हैं ना, मेक्स एवरीबॉडी हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाते हैं, आयुर्वेद बोलता है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हाँ या ना, हाँ, खास करके समर में। और वो सिर्फ दाने खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, शाक और हरी सब्जियां लेते हैं, रोज गाते हैं ना, आपने से कितने लोग पार्टी करते हैं रोज, मैं करता हूँ रोज सुबह नाश्ता हूँ भगवान के सामने, आप लोग करते हैं, कितने लोग नाश्ते भगवान के सामने, सैटरडे करते हैं बाहर वाले लोग, वीकेंड्स में जाके जिसके ठीक जाते हैं, लेकिन हम लोग रोज नाश्ते हैं, रोज गाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि यहाँ के लोग कोई भी जुआ नहीं खेलता, अवैध मैसम नहीं करता, मांसाहार नहीं करता, मदिरापान नहीं करता, किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करता, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, अच्छा भोजन, स्वस्थ जीवन बिताते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार रखते हैं। इन सब के बाद अगर कृष्ण है भी नहीं तो क्या नुकसान है, हमने अच्छा जीवन बिताया, लेकिन तुम अभी भी नहीं, तुम अगर पापमय जीवन बिताते रहोगे, गलत काम करते रहोगे और उसके बाद पता चला है कि कृष्ण है, तब तुम्हारा क्या होगा? समझदारी की बात बताए ना प्रभुपाद ने, पहले समझ लेना, बाकी लोगों को भी बताना, क्योंकि बाहर उत्साह तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अरे क्या है, अरे कृष्ण कर रहे हो, मंदिर जाते हो, तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य बोलेंगे तो तब मैन्युफैक्चर करेंगे। माँ बाप की सेवा करना, आज तक माँ बाप की तरफ पलट के नहीं रहेगा। समाज की सेवा करना, समाज की सेवा मतलब क्या? मैं ही समाज हूँ, मैं ही समाज हूँ, मैं समाज का सदस्य हूँ, इसे मेरे अपनी सेवा करना, मेरे परिवार की सेवा करना। विस्तृत इंद्रिय तृप्ति, स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति और परिवार की। श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया जिससे सारा विश्व रह रहा है। आज 700 मंदिर है इस्कॉन के विश्व भर में। ये अपना आदमी है, पहले बोल के रखा है, बीच बीच में हरी बोल बोलेंगे, ताली बजाएंगे, आप लोग सुन लेना। कहने का उद्देश्य है कि ये प्रक्रिया जो है कॉन्फिडेंटली हमें करना चाहिए कि मैं जिस मेट्रो में बैठा हूँ ये सही लक्ष्य के लिए है, और इसी इसके जितने भी यात्री है ये लोग जहाँ उतरेंगे मेरे स्टेशन में, मैं उनके साथ उतर सकता हूँ, बस उनके साथ रहना है मुझे, और इस ट्रेन से बीच में नहीं उतरना। सही ट्रेन पे आ गए, अभी उतरना नहीं है। राजविद्या क्या है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं आत्मा और शरीर का अंतर है राजविद्या। आत्मा ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के लिए कुछ करने के लिए काम नहीं और वो रिटायर हो जाता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेय तनैवं पापम अवाप्स्यति। इसमें बीच में श्लोक में बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि ये शरीर का, इस शरीर का अंत होता है नित्यस्य उक्ता शरीरिणा। शरीर में जो रहता है वो क्या है? शरीरी। देह में जो रहता है वो क्या है? देही। उसका अंत नहीं होता, इसका अंत नहीं होता। मतलब भौतिक जगत में तो आत्मा की उपस्थिति के वजह से शरीर कार्यशील है। यस नो नो यस। आत्मा शरीर से चला जाता है तो फिर आई पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, करेक्ट? क्योंकि पिताजी का शरीर वहीं पड़ा है, फिर भी पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। कौन चला गया? रूह बोलो, आत्मा बोलो, जीव बोलो, ब्रह्म बोलो, सोल बोलो, वो चला गया। लेकिन ये आत्मा कार्यशील है, निष्क्रिय नहीं है। क्योंकि यह कार्यशील है, यह आध्यात्मिक जगत से है, इस वजह से इसके प्रति, इसकी प्रकृति क्या है? आध्यात्मिक है। यह आध्यात्मिक जगत है इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? आध्यात्मिक है। बाइबल में एक वचन है, इस जगत में रहो, जगत के न रहो। इस जग में रहो, इस जग के न रहो। बी इन दिस वर्ल्ड नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। यहां पे रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि चंद्रमा में चले गए, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है फिर भी आपने अपने आप को चंद्रमा का मान लिया। आपके लिए नेचुरल नहीं है इसलिए आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं। यस नो नो यस। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में हमें कष्ट बहुत है। दुखालयम भगवान बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम रखते हैं, भुवनालयम, सुखालयम, भवालयम, ठीक है। दुखालयम कोई नहीं रखता घर का नाम, रखता है कोई? कम से कम नाम तो ठीक रहे, वैसे इतने दुखी दुख है। इसलिए दुख है क्योंकि हम यहां के नहीं हैं और यहां अपने आप को समझ रहे हैं कि हम यहीं के हैं। समझा पाए ठीक से? यस नो नो यस। किसको समझ में आया? किसको समझ में आया? दो लोगों ने हाथ उठा, मैं दोबारा बोलूंगा पॉइंट, बोलता होगा फिर नहीं तो जल्दी हाथ उठा लेना, समझ में आ गया करके। बात इतनी सी है कि हम इस जगत के नहीं है, लेकिन आप, हमने अपने आप को शरीर मान लिया और इसलिए शरीर के अनुसृत कार्य कर रहे हैं जबकि हम शरीर नहीं है, इस वजह से हमें दुख होता है। लेकिन ये राजविद्या जो है आत्मा के कार्यकलापों के बारे में है और विशेष करके आध्यात्मिक जगत में ये आत्मा क्या कार्य करता है उसके बारे में है, इसलिए राजविद्या है। और राजगुह्यम है, गुख्यम का अर्थ यह है, क्या है, रहस्यमय, कॉन्फिडेंशियल। राज्य विद्या राज्य गुख्यम, अब आप सोचोगे कि कौन सा विद्या है, कि विद्या तो सिखाई जाती है और इसको तो रहस्य बता रहे हैं, ये शताब्दी रहे कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है आप बोल रहे हैं तो आ रहा है, नहीं। विद्या को रहस्य क्यों बताया गया, कि ऐसा बताया गया कि कोई राजा, मान लीजिए राजा जो है अपने पास जितने तिजोरी है उसमें जितने भी सोने हीरे जेवरात जितने भी हैं उन सबके बारे में खुलासा जरूर करेगा, कर भी सकता है, लेकिन अपने अंतरंग जो रहस्य, जो राज की बातें हैं, राज्य की बात, राज्य के रहस्य या अपने परिवार के रहस्य, उनका उतना आसानी से खुलासा नहीं करते, करेंगे नहीं करेंगे। इसी प्रकार आचार्य बताते हैं कि भगवान के अनन्यतम भक्त जो हैं, बाकी भले ही सभी ज्ञान के बारे में खुलासा करेंगे, लेकिन इस विशेष ज्ञान के बारे में खुलासा नहीं करेंगे। फिर भी ये राजा गुफ्यम क्या है, नवम अध्याय के दूसरे श्लोक में हम अभी हैं। नवम अध्याय के 34वें और अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं, जिनके पास भगवद गीता है आप ले लीजिए, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामै वैश्यति युक्तैवम आत्मानाम मत परायणः। आप में से कोई उसका अनुवाद पढ़िए, पहले तो पेज पहुंच जाए फिर पढ़िए। हाँ, मेरे भक्त बनो, मेरे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, उसके बाद क्या बताना है, ऐसा करोगे तो क्या होगा, इस प्रकार मुझ पर पूर्ण रूप से तल्लीन होने पर तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। मामेन्द्रेश्वरम सर्टनली मी, मुझे ही, उसमें कोई विकल्प और नहीं दिया, ए फलाना बाबा का, डी फलाना योगी का, सी फलाना देवता का, नहीं, मामेन्द्रेश्वरम। भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं, 18 अध्याय, हाँ 700 श्लोक हैं, 18 का आधा क्या है, 9। भगवत गीता में लगभग 18 अध्याय में 78 श्लोक हैं, 78 या 79 श्लोक हैं, और ये नवम अध्याय का 34वां श्लोक है, मतलब एक प्रकार से भगवत गीता का बिल्कुल हृदय, आधा हृदय, हार्ट ऑफ भगवत गीता, ये है राजगुख्यम। और इसमें भगवान बता रहे हैं राजविद्या राजगुख्यम के बाद बताते हैं कि राजगुख्यम क्या है, मन मना भव मत भक्तो। अब 18वें अध्याय का 65वां श्लोक लीजिए, वो क्या है, 66 नहीं, ये मत सोचिए कि फ्री में सुला के भेज देंगे, बीच बीच में काम भी कराएंगे, मैं मेहनत करूं, आप लोग सुनते रहोगे, हाँ बताए ना तेरे, श्लोक क्या है, भगवान सोच समझ के डाल रहे हैं ना, वहां भी मनमना यहां भी मनमना, और हम क्या करते हैं, मनमाना, इसलिए भगवान को राज्य विद्या सिखाना पड़ता है। इसका अनुवाद पढ़िए माता जी, आपने शुरू कर दिया, पढ़ लीजिए, हाँ इतना कॉमन था, व्हाट हरिप्रिया प्रभु रेड एंड व्हाट माता जी रेड, ध्यान तक हैं फिर, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, और ये राज विद्या सिखाने से हम भी अर्जुन की तरह भगवान के प्रिय मित्र बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैं तुम्हें भगवत गीता इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, भक्तोस्मे सखा चेति प्रहस्यम जेतात उत्तमम, यहां भी वही उत्तमम शब्द बता रहे हैं, राज विद्या राजभूषम पवित्रम इदम उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पवित्र है, सर्वत्र शुद्ध है, हर तरीके से शुद्ध है, कि राज विद्या के जितने भी कार्यकलाप है वो बहुत शुद्ध है, क्योंकि आत्मा से संबंधित है और आत्मा अपनी नैसर्गिक स्थिति में शुद्ध है, अपनी सांविधानिक स्थिति में शुद्ध है, इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन द स्पिरिट सोल इज प्योर। लेकिन अब जबकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया, भौतिक कलमश से ये युक्त हो गया, और ये राज विद्या श्रील प्रभुपाद अन्यत्र बताते, मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ता हूं क्योंकि भगवत हाँ, नवम अध्याय के इसी 34वें श्लोक जो पढ़ रहे थे प्रभु जी, उसका पहला लाइन तात्पर्य पढ़िए।
मैं पहला लाइन मैं बताता हूँ।
हाँ, पहला लाइन पढ़िए। इस कलमश ग्रस्त भौतिक जगत से, क्या हम भौतिक जगत से हैं?
हैं, हाँ बोल रहे हैं, बोल रहे तो हाँ। जिसको बोलते हैं बेड चाल,
हम कहां से हैं? आध्यात्मिक जगत से हैं, भौतिक जगत से हैं?
भौतिक जगत से ना।
तो यहां पे क्या बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद? कलमश ग्रस्त भौतिक जगत में इसलिए दुखालय है, भौतिक जगत इसलिए दुखालय में क्योंकि कलमश ग्रस्त है। हाँ, आगे। छुटकारा पाने का एकमात्र साधन क्या है? कृष्ण भावनामृत। और ये राज विद्या का मतलब क्या है सर?
वो कुछ और है ना?
क्या है? क्या है?
इतना बोलने में इतना हिचक। माता जी, इस वॉइस इज मोर लाउडर देन ऑल ऑफ यू पुट टुगेदर।
बोलिए कृष्ण भावनामृत।
मैं बोला आप सबसे जोर, आपसे भी ज्यादा जोर से, किसी का ईगो में लग गया।
बोलिए कृष्ण भावनामृत, उसे क्या फायदा है? कृष्ण भावनामृत से क्या फायदा है? क्या है? नेगेटिव मार्क नहीं है, बोलो बोलो भैया, बोलो बैठ के बोलो। भौतिक जगत से, भौतिक जगत से क्यों छुटकारा पाना है? हम आध्यात्मिक है, और ये भौतिक जगत क्या है? कलमश ग्रस्त है। आप किसी भी आश्रम में हो, अपने आप को गृहस्थ आश्रम समझ रहे हैं, लेकिन जब तक भौतिक चेतना में रहेंगे ये गृहस्थ आश्रम नहीं है, ग्रस्त आश्रम है, कलमश ग्रस्त आश्रम है। जब तक कृष्ण को बीच में शामिल करेंगे ये गृहस्थ आश्रम होगा। आश्रम मतलब जहां पर आश्रय है कृष्ण का, विवाह कर ले इसलिए गृहस्थ आश्रम नहीं होता है, गलत समय में ना रहे। कृष्ण को यदि बीच में रखेंगे, थर्ड पार्टनर, देयर इज हस्बैंड, देयर इज वाइफ एंड देयर इज कृष्ण एट द सेंटर, थर्ड पार्टनर है कृष्ण, लेकिन मेन पार्टनर है, तब जाके गृहस्थ आश्रम होता है। तो ये लॉटरी ना खेले कि विवाह खेल हो गया तो गृहस्थ आश्रम ना समझ लें खुद को। आश्रय जब तक नहीं होता तब आश्रम नहीं होता। वो पवित्रम इदम उत्तमम, सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, धर्म्यम मतलब धर्म का कार्य, प्रत्यक्ष अवगम मतलब क्या? प्रत्यक्ष रूपेण इसका अनुभव होता है, मालूम है कि आपके सामने बढ़िया थाली रखी गई है, सोच लीजिए स्वादिष्ट है, स्वस्थ भोजन है, इसको क्या बोलते हैं, पोषण युक्त है। मैं बोल रहा दोबारा बोल रहे हैं, जो पूछा था किसी ने नहीं बोला, पोषण युक्त भोजन है, इसको खाने के बाद आपको किसी डॉक्टर के पास जाके पूछना पड़ेगा, किसी डाइटिशियन के पास जाके पूछना पड़ेगा कि मेरा पेट भर गया कि नहीं भर गया, एड्रेस लेंगे क्या? क्यों? खुद को पता चलता है, भोजन लेने से मेरा पेट भर गया नहीं कि पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्ति के विधि विधानों को सटीक हम अनुशीलन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा हृदय और शुद्ध हो रहा है, हमारे भौतिक कलमश और कम हो रहे हैं। क्योंकि मनोधार्मिक परिकल्पना के स्तर पर जितने भी ज्ञान योग इत्यादि जितने भी योग के अन्य प्रक्रियाएं हैं वो सब सूखे हैं, शुष्क हैं, श्री प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में। लेकिन ये राज विद्या क्या है? सुखम कर्तुम अव्ययम, करते समय भी आनंद देता है। प्रसाद खाने में कोई नुकसान है क्या आप लोगों को? हाँ, बहुत सोच रहे हैं, नुकसान है नहीं है?
नहीं है।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। क्या कुछ नुकसान हुआ?
ये संकीर्तन यज्ञ है,
यज्ञ है संकीर्तन, प्रायर यजंत ही सुमेह दशा, बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग में ये नाम यज्ञ करेंगे, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ये हरिनाम संकीर्तन करेगा, मतलब आप लोग। अच्छा, तुरंत अगर आप लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो ये हरिनाम संकीर्तन नियमित रूप से आप लोग करें और मेरे से करवाएं कि मुझे भी बुद्धिमान बनना है। कलयुग में यही विधि है, तू में दसाड़ा बुद्धिमान व्यक्ति ही करेगा। और बोलिए चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग में समस्या कौन सी है? हाँ थोड़ा आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वगैरह है तो डांसिंग में थोड़ी समस्या हो सकती है, फिर भी डांस देखने में किसी को कोई समस्या है? नहीं है। और कम से कम दूसरों के नाचने में हमें आनंद आएगा, कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे तो करेंगे या कुछ नहीं तो ऐसे तो करेंगे फिर हरे कृष्णा हो गया तो आधा नाच तो हो ही गया, तो आधा नाच हुआ लेकिन एक चौथा मंत्र होगा। तो चैंटिंग डांसिंग फीसिंग आसानी से कर सकते हैं, करते हुए भी आसान है और इसका परिणत फल भी सुख है। ऐसा नहीं कि सिर्फ करते समय, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका परिणत फल सुख है, आप तपस्या करते रहोगे रगड़ते रहोगे और लास्ट में आपको आनंद मिलेगा। हम आपको पोस्टेटेड चेक दे रहे हैं कि कल हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा नहीं, करते करते भी आनंद मिलता है। मिलता कि नहीं मिलता? हाँ बोलते हैं हमारे आदमी चारों ओर से घेरे हुए हैं आप लोगों को, लेकिन छुटकला हो गया आप लोग अच्छा लग रहा है ना, बोलो यार। यस नो नो यस, अच्छा है तो हरे कृष्णा, नहीं है तो हरि बोल, बोलिए नहीं है तो हरि बोल। तो हमें समझना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष अवधमम धर्म्यम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। अव्ययम का अर्थ क्या है आचार्य क्या बोलते हैं? अव्ययम का मतलब है किसी भी भक्त की प्रगति रुकती नहीं है, चलता रहता है, शाश्वत है ये अव्ययम, इम्यूटेबल, अपरिवर्तनीय, सदैव है, शाश्वत चलेगा, अनश्वर है। इस जन्म में 1% में हमने कार्य कर ली भक्ति की और मान लीजिए दुर्भाग्यवश रुक गया, प्रगति अगले जन्म में 2% से प्रारंभ होगी। श्री प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में आता है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटी सी भी प्रगति इस कार्यकलाप में हम जो करते हैं वो हमें सबसे भयानक महत्वपूर्ण भय से भी मुक्त कर देता है। वो क्या है सबसे भयानक भय क्या है किसी के लिए? मृत्यु। मृत्यु का भय भी चला जाता है। और यहां पर श्रील प्रभुपाद बताएं तात्पर्य में कि हर प्रकार के पाप कार्यों की प्रतिक्रिया जो है पवित्रम इदम उत्तमम। पवित्रम शब्द का अर्थ है कि जितने भी पाप की प्रतिक्रियाएं हैं वो पाप जिनके फल हम अभी भोग रहे हैं, वो पाप जिनके फल अभी हम भोगने वाले हैं, अभी तक हुआ नहीं है, वो पाप जिसके बीज हमने बोए हैं, क्रिया हमने कर ली है, गलत काम हमने कर लिया, और उसका अगला स्तर जबकि हमने पाप कर्म कर लिया और उसने वो कर्म जो है एक प्रवृत्ति के रूप में बदल गया। मान लीजिए कि बचपन में हमने 100 रुपए चुरा लिए, माँ बाप ने डांट दिया, हमने रोक दिया, लेकिन वो चोरी करने से एक हमने बीज भी बो दिए, कल जाके कभी फ्यूचर में हम बड़ा घोटाला करेंगे। तो 4 प्रकार के पाप की प्रतिक्रियाएं हैं, पद्म पुराण में बताता है अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। ये सारे हैं जिनका फल अभी उन्मुख है, हुआ नहीं है। इसलिए आपको लगता होगा कि बाहर की दुनिया में लोग इतने बुरे काम करते हैं उनके साथ तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम लोग तो भगत लोग हैं, हमें इतना दुख झेलना पड़ता है। टाइम आएगा भाई, सबका आएगा, कोई बचने वाला नहीं है प्रकृति के नियम से। इतना है कि भक्ति करने से पाप के फलों की प्रतिक्रिया से राहत जरूर मिलती है, क्योंकि भक्त लोग भी कार्य करते हैं, बाहरी लोग भी कार्य करते हैं, लेकिन भक्तों के कार्यकलाप अलग हैं, दिव्य हैं, दिव्य धरा चलते हैं। पैसे खुद के घर बनाने में भी लगा सकते हैं, भगवान के घर बनाने में भी लगा सकते हैं, हाँ कि नहीं? लेकिन यहाँ पर सुखम बनाने बताने का उद्देश्य है कि ये हमारे इंद्रियों को आनंद प्रदान करता है, क्योंकि हम इसमें सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं,
सुख तो हम इंद्रियों के माध्यम से ही भोग रहे ना अभी, कि अच्छा अच्छी आवाज सुनाई दे रही है, अच्छा कीर्तन चला थोड़ी देर पहले भक्त लोग कर रहे थे, हा? अभी थोड़ी देर बाद जिह्वा के लिए अच्छा कृष्ण प्रसाद मिलेगा, अभी त्वचा के लिए अच्छी हवा बह रही है, यस नो नो यस। तो ये इंद्रियों से हम जो है आनंद लेते हैं, लेकिन जब सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हुए हम कार्य कर रहे हैं भक्ति में, तो अन्य योग की पद्धति की तरह शुष्क नहीं रहती हमारी इंद्रियां। वहां पे बोलते हैं सब त्याग दो, सब त्याग दो। अगर मैं आपको बोलूंगा कि ताजमहल मैंने त्याग दिया, तो कौन सा तोप मारा मैंने? ताजमहल मेरा था क्या? कब था मेरा? तो भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं है, सब जोड़ना है, सब कृष्ण के साथ जोड़ना है। निर्बंधक कृष्ण संबंध है, सब कुछ कृष्ण से संबंधित है। कौन सी चीजें जो कृष्ण से संबंधित नहीं है? बोलिए बोलिए। वो सभी चीजें उनसे संबंधित नहीं है जो जोड़ नहीं रहे हैं हम, हमारी गलती है। सब कुछ भगवान से संबंधित है, और हम हमारे पास जो भी साधन उपाय जितने भी प्राप्त होते हैं उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे, लगाते हुए भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करेंगे, जो कि भगवत गीता का विषय वस्तु है। आप इंट्रोडक्शन में पढ़िए, प्रभात बताते हैं कि भगवान की इंद्रियों की तुष्टि ही भगवत गीता की विषय वस्तु है। इस प्रकार से इस राज विद्या का अनुशीलन करेंगे तो हम सुख के साथ रहेंगे। और टाइपरेटर को श्रील प्रभात बोलते हैं, टाइपरेटर को आप कहीं भी भेजो, स्वर्गलोक में भी भेजो, क्या करेगा? टक 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 टक। प्रभाव प्रयोग करते हैं सर, टक 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 टक। इसी प्रकार आत्मा की सांविधानिक क्रिया क्या है? यहां हम अगर भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करने से यदि हम आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचेंगे, क्योंकि राज विद्या सीख कर कुछ तो बनेंगे ना, अभ्यास करके कुछ सिद्ध बनेंगे ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो राज विद्या का प्रैक्टिस करते हुए जब आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश करेंगे, वहां भी क्या करेंगे, क्या करेंगे? भगवान आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? दो तीन लोग सेवा करेंगे, बाकी लोग प्रणाम करेंगे, बस छोड़ देंगे, थैंक यू भगवान, थैंक यू फॉर कमिंग, सी यू अगेन। तो नारद मुनि के प्रसंग में हमें पता चलता है कि भक्ति वेदांत जो कि महान भक्त थे भगवान के, उनके संग में श्रवण कीर्तन उन्होंने किया, भगवान के बारे में सुना, जैसे आप लोग कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन किया, भगवान के बारे में सुना, और वो लोग जब भगवान को अर्पित प्रसाद प्राप्त करते थे तो उनका उच्चिष्ट प्राप्त करते थे नारद मुनि, और उससे वो शुद्ध बने, और इससे अगले जन्म में दासी पुत्र के रूप में पैदा होने के बावजूद पिछले जन्म में, अगले जन्म में स्वयं नारद मुनि बन गए। कहने का उद्देश्य है कि ये कार्यकलाप शुद्ध है, पवित्र है, इस राज विद्या के अनुशीलन से, जो कि आत्मा का आध्यात्मिक जगत का कार्यकलाप क्या है ये हमें सिखाता है राजगुह्यम। इसको सीखने से हम आनंद में ही रहेंगे, ये हमारे लिए सहज है, क्योंकि हम इंद्रियों को सेवा में लगा रहे हैं भगवान की। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, आपने भी कितने लोग भगवान को देखना चाहते हैं? श्री भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया, भगवान को देखने की कोशिश मत करो, इस प्रकार सेवा करो कि भगवान स्वयं अपने आप को आपके सामने प्रकट करे। भक्ति सिद्धांत महाराज की वाणी है, ताली बजाओ, अच्छा है। तो ये राज विद्या का सार यही है, राज भूषण यही है कि आध्यात्मिक जगत का कार्यकलाप क्या है, इस आत्मा का हमें सीखने का अभ्यास करने का तरीका है राज विद्या, जो कि वैदिक भक्ति का श्रवणम कीर्तनम, भक्तों के संग में कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना, एक दूसरे को खिलाना, इस विधि को अपनाते हुए भगवान के लिए गाते हुए नाचते हुए भगवतधाम जाएंगे और वही सेवा करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं, यही राज विद्या है। और इसलिए ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख के साथ अनुशीलन भी किया जाता है, इसका परिणत फल भी आनंद है, मतलब सिद्ध भी मेरा पट भी मेरी। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? ये मत पूछिए प्रसाद में क्या है, मुझे पता नहीं, इसके अलावा कोई भी प्रश्न पूछिए।
अब क्या पूछे, समय हो गया, घर जाने का टाइम हो गया, और भी बुलवाओगे क्या? इसमें यार नो क्वेश्चंस। फिर गुरुदेव बोले यस थैंक यू, कोई अंतर नहीं है। अगर आप शरीर शब्द प्रयोग करते हो तो आत्मा को शरीर ही बोलते हैं, अगर देह शब्द प्रयोग करते हैं तो आत्मा को देह ही बोलते हैं, बस इतना ही। शाब्दिक अंतर है, तो अर्थ का कोई अंतर नहीं है। क्योंकि एक श्लोक में भगवान बोलते हैं नित्य सोक्ता शरीर नहा, शरीर क्या है, क्या है आत्मा, शरीर ही मतलब आत्मा अभी तो बताया। लेकिन दूसरे श्लोक में भगवान ये भी बोलते हैं देही नो अस्मिन यथा देह, उसमें देही कौन है, ये अंतर ये सिखाने के लिए बताया था। और यस डायरेक्ट के पूछे तो सुखम कर तुम अभी क्या बोले इस जन्म के, मेरे भाई इसलिए बोला स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, छोटी सी भी प्रकृति इस भक्ति के मार्ग में जो करेंगे उसको सबसे महान भय से मुक्ति मिलती है जो कि मृत्यु है। मृत्यु मतलब बार बार मृत्यु, नए नए योनियों को अपनाना, निम्न योनियों में गिरना। जो भक्ति करता है, जब शराबी कबाबी श्रीलंपट बॉस आपको कुछ 8 घंटे के नौकरी के लिए पैसा देता है हर महीना, तो परम भगवान श्री कृष्ण जिनके लिए आपने इतना समय निकाला, भक्ति दी, अपने भक्ति का समय दिया, तो वो कृतज्ञ है, आपकी तरफ नहीं देखेंगे, वो आपका ध्यान नहीं रखेंगे, रखेंगे ना। रक्षस अतीत विश्वासम, शरणागति का तीसरा लक्षण है कि मेरे परम भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे, भले ही मैं किसी भी स्थिति में जाऊं, मेरे भगवान मुझे पकड़ के वापस लाएंगे। कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, हम नहीं चाहते कि हम उनके पास जाएं, इसलिए कृष्ण किसी न किसी प्रकार से भगवत गीता भेजते हैं, भक्त भेजते हैं, गुरु भेजते हैं। चक्षु दान दिलो जाए, जन्म जन्म प्रभु जय, जन्म जन्मांतर तक वो मेरे प्रभु हैं, गुरु गुरु को भेजते हैं भगवान। श्रील प्रभुपाद तो भेजा, हम जैसे बद्ध जीवों को भगवत गीता अवतारों दिलाया, पिछले जन्म में आप क्या थे कुछ पता है आपको, मेरे भी पता नहीं क्या था, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से मुझे ये पता चल गया कि कम से कम अगला जन्म अगर मुझे मनुष्य शरीर कम से कम मिलना है तो मुझे भक्ति की विधियों का पालन करना चाहिए, और कर्मण्येव अधिकारस्ते, मेरे हाथ में उतना ही है। फल कौन देता है, मां फलेषु कदाचन, भगवान देते हैं। दूसरा अध्याय, 9वें अध्याय में पहुंच चुके हैं, ये श्लोक हो गया, फल तो भगवान देंगे, हमारा कार्य है सिर्फ भक्ति के विधि का पालन करते रहना, उसका फल परिणाम कौन देंगे। और हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि जब भौतिक जगत में भी लोग कृतज्ञता पूर्वक हमारे कर्म का फल देते हैं, परम भगवान श्री कृष्ण देंगे नहीं देंगे, प्रभु जी बोलिए क्या लग रहा है आपको, हाँ नहीं देंगे बोलो तो मारूंगा। और कोई प्रश्न, यस प्रभु जी, वेरी गुड क्वेश्चन, अति उत्तम प्रश्न आपने प्रस्तुत किया। आप जो भी खाते हैं उसको भगवान का अर्पित करिए, यद करोषि यद अश्नाति यद जुहोषि ददासि यद तपस्यति कौन्तेया तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तुम जो भी खाते हो, तुम जो भी करते हो, जो भी कार्यकलाप कर रहे हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी दान करते हो, उन सब का परिणत फल मुझे ही समझो, मानो और मुझको ही अर्पित करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आगे 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आएगा। बहुत सुसुखम कर्तुम अभियम का मतलब ये भी है, आसानी से किया जा सकता है। भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ हीरा जवाहरात पनीर टीका की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुलसी दल कुछ गंगा जल, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अभी कौन सा आदमी जो फूल खाता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम पुष्प भी अर्पित करो, मैं स्वीकार करूंगा। क्यों, क्योंकि उस श्लोक में भगवान 2 बार दादा हम भक्त्युपास व्रतम बोलते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति बोलते हैं। भगवान को पनीर सब्जी नहीं चाहिए, भगवान को पुलाव नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं भाव से हम करें, भगवान के लिए भावग्राही जनार्दना। हम जो सब्जी अर्पित कर रहे हैं, हमें तो सब्जी का भाव मालूम है, लेकिन भगवान को सब्जी का भाव मालूम है। हम किस रूप से भगवान को अर्पित कर रहे हैं उस भाव को भगवान समझते हैं, उस भाव से हमें अर्पित करना चाहिए। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसे कुछ वेतन मिलता है, तो भगवान के लिए अधिक से अधिक देने की कोशिश करें। आपके पास कुछ समय है तो भगवान को दें,
जीप में मेरे पास समय नहीं करके भगवान को 4 रुपए चढ़ा के मत जाएं, अपना समय दें, श्रमदान करें भगवान के लिए। शरीर दिया है ना भगवान ने, तो वो शक्ति भगवान के लिए करोगे। आपके कोई क्षमता है आप यदि लिख सकते हैं या गा सकते हैं या अच्छी तरह व्यवस्थापन कर सकते हैं, तो अपनी क्षमता को भगवान की सेवा में दक्ष साधकों के भक्तों के मार्गदर्शन में करिए। क्योंकि जो परम भगवान के दिव्य संदेश को पहुंचाता है वो गुरु और प्रामाणिक भक्त जो हैं, उनकी सेवा करने से हमें भगवान का ज्ञान पूर्णतया प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम उसे भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं, तब हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो जैसा संग वैसा रंग, जैसे आप सोमवारी कार्यक्रम में आ रहे हैं इसी प्रकार आते रहिए भक्तों के मार्गदर्शन में। अब समझिए कि कैसे मैं अपने जीवन को और कृष्णीकृत करूं। हम आध्यात्मिक हैं लेकिन हमारा जीवन अभी आध्यात्मिक नहीं है, तो इसको किस प्रकार से मैं और आध्यात्मिक बना सकता हूं, इसके लिए प्रशिक्षण आपको इन प्रकार की कक्षाओं से मिल सकती है, लेकिन आना आपको ही है।